संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बारह भावनाओं के संदर्भ में धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है, इसमें मुनियों के 28 मूल गुणों की बात थी। इसमें 5 महावृत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय और 6 प्रकार के आवश्यक, इस तरह 21 गुणों की चर्चा हुई। साथ में 3 गुप्तियों की भी चर्चा हुई और शेष 7 गुणों में भी 6 गुणों की चर्चा हुई। वे 6 गुण कौन कौन से थे? उनका रोजाना सामायिक करना, वंदना करना, ये तो 6 आवश्यक थे। फिर नहाना नहीं, दंत धोवन नहीं करना, रंचमात्र भी कपड़े नहीं रखना माने दिगंबर दशा, ये 3। पिछली रेंद में थोड़ा सोना, ये 4। और दिन में 1 बार आहार लेना, ये 5। और खड़े खड़े आहार लेना, अल्पाहार लेना, ये 6। इनकी चर्चा हुई। अब 7वां है कि केस लॉन्च करते हैं। केस लॉन्च का मतलब समझते हैं? ये अपन बाल बनवाते हैं नानियों से, तो किसी छुरे से किसी, वो अपने हाथ से उखाड़ते हैं। दिगंबर मुनिराज कभी किसी नाई से बाल नहीं बनवाते और अपने हाथ से बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पराधीनता है, वो स्वाधीनता नहीं है जो स्वाधीनता स्वयं के केस लॉन्च करने में है। क्योंकि बनवाएंगे तो किसी दूसरे से बनवाना पड़ेगा, और आप कहें कि हम नहीं बनवाएंगे दूसरे से, क्योंकि आजकल तो लोग स्वयं अपने बाल बनाने लग गए हैं, तो महाराज भी अपने स्वयं बना लेंगे। उस जमाने में केस लॉन्च करना पड़ता होगा, लेकिन आजकल तो स्वयं बनाने के भी बहुत साधन हो गए हैं, इसलिए फिर भी क्यों लोचें, क्यों उखाड़ें, क्यों बना क्यों ना लें? तो बनाने के लिए भी साधनों की अपेक्षा है। वेजर चाहिए, ब्लड चाहिए, प्रसाधन, पानी, कई चीजों की अपेक्षा उसमें रहती है ना, तो वो भी एक पराधीनता की बात है। इसलिए भी कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि जिसमें पराधीनता हो। देखो आजकल ये बाल बनाने की प्रवृत्ति स्वयं की हो गई है। इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार मैं नाई के यहाँ बाल बनवाने गया। जब भी मैं जाता हूँ तो दाढ़ी के बाल स्वयं बना करके जाता हूँ माथे के बाल बनवाने के लिए। तो वो नाई मेरे से बोला कि प्रणव जी साहब, एक बात कहूँ, यदि बुरा ना मानो तो। गजब करता है, तू यदि बुरी बात कहेगा तो मैं गारंटी से बुरा मानूंगा। तू दो दो काम एक साथ करना चाहता है कि बुरी बात भी कहना चाहता है और मुझे बांध लेना चाहता है कि मैं बुरा ना मानूं। ये तो नक्की है कि तू कोई बुरी बात कहने वाला है, तेरा मन ही ये बात कह रहा है, अन्यथा तू ये पूछता क्यों कि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। इससे सिद्ध है कि तू कोई ऐसी बात ही कहने वाला है कि जिसके कोई बुरा मान सकता है। तो तू बुरी बात कहेगा तो मैं तो गारंटी से बुरा मानूंगा, तू कहे और चाहे मत कहे। अभी मैं इतना बड़ा संत नहीं हुआ हूं क्यों कि तू चाहे जैसी बातें कहे और मैं बुरा नहीं मानू। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय और कुटिल बचन साधु सहे और इसे सहा न जाए। यदि मैं साधु हो गया होता ना तो बाल बनवाने तेरी दुकान पर नहीं आता, फिर तो मैं केस लॉन्च करता, नाइनों का क्या काम। इसलिए तुम बुरी बात कहेगा तो मैं बुरा अवश्य मानूंगा। तो एकदम बेचारा घबराया और कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं नहीं कहता हूं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, अब तेरे मन में आ गई है तो तू कह ही ले, जो होगा सो देखा जाएगा। तब वो बड़े संकोच के साथ बोला कि हम क्या करें, अब तो घर घर नाई हो गए हैं, तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी, हम तो भूखों ही मर जाएंगे। समझा वो क्या कहना चाहता था कि सब लोग अपने बाल बनाने लग गए हैं तो हमसे बाल नहीं बनवाएंगे तो फिर हमारा अब पेट कैसे भरेगा। इस बात को उसने ये कहा घर घर नाई हो गए हैं, मैं चूंकि बाल बना के गया था ना अपने, यानी आप भी नाई बन गए तो हम नाइयों का क्या होगा। मैंने उससे कहा कि भाई क्या करें, नाई भंगी बन गए तो सब लोग नाई बन गए, तो एकदम क्या बात करते हैं, नाई भंगी बन गए, नाई कैसे भंगी बन गए। तो मैंने कहा सब नाई कैसे बन गए, बोले बाल बनाने लग गए ना, जो बाल बनाए वो नाई। बात तो तू ठीक कहता है, तो जब तेरा छोटा बच्चा है, कि तुम छोटा बच्चा था 2 बरस का 1 बरस का, और जब तू कहीं सोच कर देता था, लेटरिन कहीं चला जाता था तो कौन साफ करता था, तो मेरी मम्मी। तो जो उसने लेटरिन साफ करी तो लेटरिन साफ करे उसे कौन बोलते हैं, और जब तेरी मां भंगिन हो गई तो उसका बेटा तू क्या हुआ। अब वो बोला कि पंडित जी ये बात तो नहीं बनी। नहीं क्यों नहीं बनी, बोले जो दूसरों की लेटरिन साफ करे भंगी तो उसे कहते हैं, जो अपनी तो सब करते हैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ही जो दूसरों के बाल बनाए उसे नाई कहते हैं, अपने तो सब बनाते हैं। तो बाल बनाने में भी एक पराधीनता है, किसी का बिजनेस है, किसी की आजीविका है, किसी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उसे बुलाना पड़ेगा। मुनिराजों के जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें रंच मात्र भी पराधीनता हो। और दूसरी बात यह है कि वह श्रृंगार नहीं होता, बाल हमारे श्रृंगार का प्रतीक है। तो वो जब केस लॉन्च करते हैं तो अपने आप ऐसे बिखरे बिखरे से बाल हो जाते हैं कि वो श्रृंगार के प्रतीक नहीं रहते हैं। और उसमें भी ये प्रतिबंध है कि कोई भी मुनिराज चाहे तो 4 महीने से ज्यादा तक वो केस लॉन्च नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। 4 महीने के भीतर एक बार करना ही पड़ेंगे, और नीचे की भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि वो हर 8 महीने में केस लॉन्च करने बैठ जाए, कि उसके पहले भी वो नहीं कर सकता। ये दोनों लिमिट क्यों है, कि रोजाना रोजाना करने बैठ जाए इसका मतलब है कि वो बाल जो बढ़ते हैं ना उससे ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा जरा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जैसे कि हम रोजाना बाल बनाने लग गए ना दाढ़ी के, ऐसे ही वो रोजाना लेंच करके एकदम अपनी घुटी हुई चांद को चमकती हुई रखना चाहता है संत, जैसे दूसरे से महासंत देखे बढ़िया। वो भी शौक का प्रतीक है, इसलिए वो बराबर जल्दी जल्दी नहीं कर सकता है केस लॉन्च, और ज्यादा दिन क्यों नहीं कर सकता है, ज्यादा दिन में इसलिए नहीं कर सकता है फिर वो लंबे लंबे बाल भी शौक के ही प्रतीक हैं। और फिर वो क्यों नहीं करेगा कि पीछे जो उसको पीड़ा होती है ना उस पीड़ा से इतने कम हो बचने के लिए नहीं करेगा, और फिर 4 महीने से ज्यादा बाल हो जाएंगे तो उन्हें संभालना पड़ेगा, बिना संभाले बिना फिर वो नहीं रह सकते हैं, फिर आंखों पे आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, तो उन्हें संभाल के रखना पड़ेगा, फिर कंगा मंगा, फिर धोना मोना भी बहुत चक्कर खड़े होंगे। तो ना वो ज्यादा बड़े हों ना छोटे हों, फिर बिरले हों, जिसमें ना तो शौक की पूर्ति होती हो न श्रृंगार का प्रतीक हो है, और ना जिसमें पराधीनता हो, ऐसी उनकी वृत्ति होती है। ये अब आप कल्पना कीजिए कि
रंच मात्र भी पराधीनता न रहे, इसके लिए जिसने अपने हाथ से केस लॉन्च करने का नक्की किया हो, जिसने एक वस्त्र संभाल लंगोटी संभालने ना पड़े, जिसने भी लंगोटी जैसे वस्त्र का भी त्याग किया हो, क्योंकि वो अपने उपयोग को पर की संभाल में रंच मात्र भी उलझाना नहीं चाहता है। क्या इसलिए वो बाहर की कोई चीज नहीं रखते जिसे संभाले बिना नहीं रखा जा सके। अब ये देह है, इसको वे छोड़ सकते होते तो इसको भी छोड़ देते, क्योंकि देह में उनकी एकत्व बुद्धि तो टूट ही गई है। अब ये देह ऐसे आसानी से, जैसे कि हमने बाल उखाड़ के फेंक दिए और सब चीजें कपड़े उतार के फेंक दिए, ऐसे ये देह को फेंका नहीं जा सकता। यदि इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो आत्महत्या नाम का महापाप होगा। तो इसने उन्होंने क्या की थे कि देह नहीं छूटी तो देह की परवाह छोड़ दी। क्या इसलिए देह छूटी ही है, बाकी हम देह का करते ही क्या है परवाह के अलावा। प्रत्येक द्रव्य की क्रिया तो अपने आप ही होती है, बच्चा अपना काम अपने आप करता है, माँ बाप अपना करते हैं, पत्नी अपना करती है, गांव वाले अपना करते हैं, हम तो उनकी परवाह ही करते हैं ना, चिंता करते हैं ना, वो ही छोड़ना है तो वो उन्होंने छोड़ दी देह की भी। इस तरीके से वो सारे जगत से उन्होंने अपने उपयोग को हटा लिया है। इतनी इतनी छोटी बातों में भी जो उनके देने की आवश्यकता की चीजें थी, अरे भाई हम लोग हैं ना, इतना इतना परिग्रह अपने घरों में जोड़ रखा है, तो भी यहां से कहीं बाहर जाते हैं और बोझा ढोने वाला कोई कुली वगैरह की व्यवस्था नहीं हो और अपने साथ ही रखना पड़े, महावीर तक जी तक की भी आप पैदल यात्रा करें कि संकल्प कर लें कि मैं शिखर जी की यहां से पैदल यात्रा करूंगा और वहां भी ऊपर जाऊंगा और यहां से शिखर जी तक पैदल जाऊंगा, होते ना पद यात्रा जी आजकल बोलते हैं, तब भी आप अपना आवश्यक सामान तो साथ में रखते हो कि नहीं? जरा कल्पना करो यहीं बैठे बैठे कि आपने ये संकल्प किया कि शिखर जी तक की मैं पैदल यात्रा करूंगा, तो कल आप सामान बांधोगे तो उसमें क्या क्या रखोगे, बोलो हुकुमचंद जी, सोचो क्या क्या रखोगे, सोचो। तो वो बाल बनाने की सामग्री तो रखनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि 3 महीने तक बाल नहीं बना ऐसा तो हो नहीं सकता है, ब्रश मुरुश तो रखना ही पड़ेगा ना, क्यों, दातुन करने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, 2-4 आवश्यक कपड़े कम से कम उड़ने बिछाने की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको खुद लाद के जाना है तो भी कुछ इतनी आवश्यक चीजें हैं कि जिन्हें आप रखेंगे रखेंगे और रखेंगे ही। उन मुनिराज ने उन आवश्यक चीजों की जिनमें दैनिक क्रिया में इतनी आवश्यकता पड़ती थी और ऐसी कोई खास हिंसा वगैरह भी नहीं थी उसमें, क्या हिंसा झूठ चोरी कुशील वाली बात भी नहीं थी, फिर उनके क्यों छोड़ दी, वो रख लेते तो क्या दिक्कत थी। इसीलिए तो छोड़ी है कि उनकी परवाह करनी पड़ती है, सबसे बड़ी दिक्कत है परवाह करनी, उसे संभाल के रखना, खोजा तो दूसरी व्यवस्था करना, खोजा तो दूसरी व्यवस्था करने की बात तो बाद की है, लेकिन वो 24 घंटा चित्त में खोना जाए वो हमारे उपयोग को खाती है। जरा इस बात को और समझना हो बारीकी से, तो ऐसी कल्पना करो कि आप यहां से रेल में गए और 2 लाख के नगद नोट आप अपनी जेबों में रख लिए, ले जाना थे, और वैसे आपने यात्रा की रात भर की और बिना बिल्कुल नोटों की यात्रा, अकेला टिकट ले गए और कुछ नहीं, बाकी सब व्यवस्था जहां जा रहे हैं आप वहां आपकी सब है, तो उन दोनों यात्राओं में कुछ फर्क है कि नहीं? एक में जाके आराम से सो जाएंगे और दूसरी में रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों? कि उसकी परिग्रह की चिंता है ना। तो ऐसे ही कहते हैं, आड़े बाल के बराबर भी शरीर से बाहर परिग्रह रखें तो उसकी सुरक्षा की चिंता होगी होगी और होगी, और उस चिंता में उपयोग इतना निश्चिंत नहीं हो सकता है कि तीन कषाय का अभाव हो जाए और वो आत्मा में हर अंतर्मुहूर्त में गोता लगाने चला जाए। उन्होंने कोई वैसे ही नहीं छोड़ दी तो उससे द्वेष था। उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने तो उसकी परवाह छोड़ी है, उन्होंने तो उसकी चिंता छोड़ी है। भगवान महावीर नग्न दिगंबर थे, 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन हमारा एक संप्रदाय ऐसा है वो ये कहता है ना कि महावीर नग्न तो थे लेकिन उन्होंने बुद्धिपूर्वक वस्त्र नहीं त्यागे थे। एक दुपट्टा रखा था जो कंधे पे उनके लगा था, देव दूसरे से बोलते हैं वो, तो अच्छा एक ही दुपट्टा था ना, और तो नहीं था ना कुछ, लंगोटी तो नहीं लगाई थी ना, गांठ तो नहीं बांधी थी ना, तो वो तो छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? अब वो भी छूट गया कि कैसे छूट गया, एक झाड़ी में फंस उलझ गया तो वे आगे चले गए और दुपट्टा वहीं उलझ के रह गया। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वस्त्र का त्याग बुद्धिपूर्वक करने की जरूरत नहीं है, महावीर ने भी नहीं किया था, बस इतनी सी बात है। लेकिन इतना तो नक्की हो ही गया ना, उन्हें सारी परवाह छोड़ दी थी, नहीं तो झाड़ी में से निकाल के फिर ले सकते थे दुपट्टा क्यों, और फिर बाद में दूसरा दुपट्टा उन्होंने लिया ही नहीं। चलो इतनी बात तो सिद्ध हो ही गई ना कि किसी भी चीज के साथ में रखने की परवाह साधु जन नहीं करते, होए तो वे साधु नहीं। अब ऐसा जो वीतरागी दिगंबर धर्म है, इतना परिग्रह के प्रति अनासक्ति वाला धर्म है कि रंच मात्र भी परवाह न करे किसी की, और वो इतनी परवाह अपने माथे पे ओढ़ ले। घर में हो तो दो बच्चे पैदा करते तो दो की चिंता थी, और अब 200 की चिंता क्यों? मेरे कहने का अर्थ है कि यदि और वो किसान हम करते, हम क्या करते, हम क्या करते, तो थोड़ा विकल्प ही करते, वो विकल्प ही तो छोड़ने की बात है भाई साहब, क्योंकि वास्तव में अज्ञानी भी विकल्प ही करता है और पर में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्या जब चक्रवर्ती भी विकल्प ही करता है और विकल्प ही छोड़ना है, वो निर्विकल्प होने के वजह से ही ये सारी चीजें छूटती हैं उसकी। हम एक एक बात पे बता के इसमें क्या तकलीफ थी, एक ब्लेड रख लेते बल्ब सुबह बना लेते, उसमें क्या तकलीफ थी, उसमें क्या तकलीफ थी, इसमें क्या दोष है, इसमें किस जीव की हत्या हुई? वो हत्या वाला मामला तो गया बहुत पुराना, अहिंसानुव्रत सत्यानुव्रत में और अहिंसा महाव्रत में ही चला गया था। क्या अब तो ये माथे का बोझा उतार कर फेंकने के लिए ये सारा बातचीत उनके जीवन में आई है। कौन सी? केस लॉन्च करना, नग्न दिगंबर रहना। ये जो 27 गुण है ना, वो इस बात के प्रतीक हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि महाराज से यदि पूछो कि अभी आगे का कोई प्रोग्राम नक्की नहीं करते हैं, वो ये मुनि धर्म का बहुत स्वाभाविक रूप है। आज तो उसका प्रदर्शन होता है, महीनों पहले के कार्यक्रम बना बर बने रहते हैं और कहा ये जाता रहता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं हमारा पता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन एक्चुअल मुनिराज का एक घंटे के अभी आगे का प्रोग्राम बनता ही नहीं है, इसलिए उनकी ये भाषा ही सुनिश्चित है। आप यदि कुछ बात कहेंगे तो एक तो उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं है, और जवाब देंगे ही तो इस भाषा में देंगे, देखें क्या होता है। क्या मतलब इसका? कि महाराज यहां पर पंच कल्याणक है, 10 किलोमीटर दूर पर आप यहां विराजे हो, तो आप पंच कल्याणक में पधारोगे कि नहीं? तो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो जवाब देंगे तो क्या देंगे? देखें क्या होता है। सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते कि हाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन अभी नक्की ही नहीं है ना, नक्की किया ही नहीं है ना विकल्प ने, तो कैसे कह दें बोलो आप? क्यों? कि अभी वो कहते हैं कि हाँ जाऊंगा और बाद में संयोग नहीं बना, विकल्प नहीं बना, तो आप कहेंगे झूठ बोला था महाराज ने। अभी कह देंगे कि नहीं जाऊंगा और बाद में ऐसा संयोग बन गया और सहज भाव से चले गए, तो आज एक शब्द हां और ना कहते ही आज से हम उसे बंधते हैं ना, और ये बंधन उन्होंने स्वीकार नहीं है। तो देखें क्या होता है। क्यों बोलते फिर कि हम तो सहज ज्ञाता दृष्टा हैं इस परिणति के, यदि जाना हो जाएगा तो जान लेंगे जा रहे हैं, तो नहीं होगा तो जान लेंगे कि नहीं जाएगा। खत्म। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं माने हम देखेंगे, जो होगा उसे देखेंगे, हम जाएंगे नहीं। यदि जाना होगा तो उसे जान लेंगे और नहीं जाना होगा तो उसे जान लेंगे। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, हम कोई नक्की करते ही नहीं हैं। कि महाराज कभी सोचा तो होगा, हाँ विकल्प तो कभी आया था, लेकिन वो हमने उसे जल्दी से जल्दी खत्म भी कर दिया है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि सर बारीकी की सारी डिटेल देना कोई को जरूरी है? इतनी लंबी बात करने को मुनिराज को आवश्यकता ही क्या है जो हर प्रश्न का जवाब दें? वे अपने आत्मा में लीन नहीं रह सकते हैं? लोगों को मौन वाला रास्ता समझ में ही नहीं आता है जो असली धर्म है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि एक साधु संत यहां बैठे हैं, एक गाय यहां से दौड़ती हुई जा रही है, कसाई उसके पीछे पीछे जा रहा है, और कसाई ने पूछा महाराज गाय इधर को गई कि नहीं गई, कहां गई? तो गाय तो इधर गई थी, महाराज ने देखी थी लेकिन कह दिया इधर गई, झूठ बोल दिया। क्यों? सत्य बोलते तो कसाई गाय को पकड़ के काट डालता, झूठ बोल दिया तो वो बेचारी गाय बच गई। इसलिए कभी कभी झूठ बोलना भी ठीक है। ऐसा उदाहरण देके झूठ को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने को उचित साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि किसी साधु संत को हर राहगीर का जवाब देना जरूरी है? क्या क्या तीसरा रास्ता नहीं है कि वे चुप रह सकते? क्या ये बताना जरूरी है कि यहां गई कि यहां गई? उन्होंने पहचान लिया ये कसाई है, ये भी पहचान लिया कि ये गाय है, बिना पूछे ही। क्यों? हो सकता है बेचारे घर का मालिक भी हो गाय का, और उसमें गाय का ही हित हो, वहां जाके गलत रास्ते में फंस जाए कहीं, और मालिक मिल जाता तो घर पे पहुंच जाती। लेकिन ऐसी कहानी अपनी तरफ से गढ़ेंगे कि किसी तरह किसी झूठ को बोलने को धर्म मानना सिद्ध हो जाएगा, झगड़ा करना। लेकिन मौन उपाय है ना, उस बारे में वो चुप भी तो रह सकते हैं बिल्कुल, कि सब वो नहीं माने, नहीं माने का सवाल क्या है? जब मौन माने मौन। ऐसे ही हर बात का जवाब भी देना जरूरी कहां है उन्हें? हम ग्रस्त भी नहीं, हमारे ग्रस्तों के सामने ये समस्या नहीं आती क्या कि वो साहब अगली साल लंदन में पंचकल्याणक होने जा रहा है, तो डॉक्टर साहब आप उसमें जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो, अब हमें बताएं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी वहां पंचकरण होने वाला है? नहीं 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 सुना है, अभी वो ही नक्की नहीं है, और अभी से हम तय कर लें कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, घोषणा करने लग जाए कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तुम्हें जवाब दे दें। अरे वो ही नक्की नहीं है, हमारा ही नक्की नहीं है। हम सामान्य ग्रस्त भी कहते हैं जब वहां होना नक्की होगा फिर वो हमें निमंत्रण देने आएंगे। क्यों? फिर हमारे पास समय होगा, उस वक्त की क्या परिस्थितियां होंगी, हम जब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्यों फिर वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नमन कितनी टेढ़े हैं। जब होगा जब देखा जाएगा तो हम क्या देखेंगे? अपन लोग भी तो यही कहते हैं ना कि वहां पंचकल्याणक में आप जाएंगे कि नहीं, कि देखेंगे। ये झूठ नहीं है, क्योंकि अभी जो वस्तु की स्थिति है, कहने का अर्थ है कि उनका कोई प्लानिंग होता ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग में बंधते ही उनके माथे पर एक बोझा खड़ा हो जाता है, फिर वो ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी कि हां कह दी तो मुझे पालना पड़ेगा। फिर रोजाना 5 किलोमीटर चलते हैं तो कभी कभी भाग भाग कर 30-30 किलोमीटर चलेंगे। जिस गांव में शास्त्र की आज्ञा है कि गांव से पास होए तो 3 दिन रुकें, तो 3 घंटे भी नहीं रुकेंगे। और कभी कभी बरसों जमे रहेंगे। ये सब परिणतियां काहे से खड़ी होती हैं? क्यों? कि वो कहीं से आप बंधते हैं और आप बने ही नहीं। बिल्कुल अपने जीवन को सहज नॉर्मल रखें तो आत्मा में हर अंतर्भूत में जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने ऐसा कोई काम अपने माथे नहीं रखा कि जिसमें रंच मात्र भी पराधीनता हो। इस तरह हमने मुनियों के 28 मूल गुणों के बारे में चर्चा की। अब उनकी और विशेष कैसी परिणति होती है इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोग सोवाणी मस्तके नमो सदा देखूं।